नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर देशभर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नवाचार, वैज्ञानिक सोच और त्वरित समाधान खोजने का आह्वान किया। सरकार मछुआरों की सुरक्षा और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने वाले समुद्री जहाजों पर 1,00,000 ट्रांसपॉन्डर लगाएगी। जी 4 देशों ने कहा, सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। और भारतीय पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन पर 18 महीने के लिए निलंबित किया गया। प्रमोद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर देशभर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक आंदोलन बन गया है।
हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, अब एक ही आंदोलन बन गया है। करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आने वाले 15 अगस्त पर एक क्या रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है जो देश को एक सूत्र में बांधता है।
ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धापूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस यात्रा में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य लोगों में एकता और राष्ट्रीय गर्व की भावना को बढ़ावा देना है। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। नागपुर नगर निगम ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज तिरंगा मैराथन का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सहायक नगर आयुक्त प्रकाश वरहाड़े ने संत उर्सुला विद्यालय में मैराथन को हरी झंडी दिखाई।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
जम्मू कश्मीर में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे जम्मू क्षेत्र में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मुख्य समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सलामी लेंगे और समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 15-15 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी और उसके बाद नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वास्तविक निमंत्रण कार्ड होगा, उन्हें स्टेशनों पर सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र दिखाने पर प्रवेश और यात्रा की अनुमति दी जाएगी। ये व्यवस्था केवल लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों पर निकास के लिए मान्य होगी, जो कार्यक्रम स्थल के सबसे नजदीक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नवाचार, वैज्ञानिक सोच और समस्याओं का त्वरित समाधान तलाशने पर बल दिया। वे आज भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। वित्त मंत्री ने कहा कि विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान का अधिकतम उपयोग समाज की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने उन्नत रसायन के जरिए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों का भी आह्वान किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक हरित हाइड्रोजन मिशन, अनुसंधान और 5G प्रौद्योगिकी के लिए बढ़ते बजट आवंटन सहित सरकार के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से ही हम देश को विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
We need that knowledge that you have got from this esteemed institution in coming up with innovative ways in which India's progress towards a Vikasit Bharat, that is 2047, can be enabled by the kind of very quick and speedy solutions that you may offer for us to move and transition into a better country.
Ye samachar hamari website newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है, 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार मछुआरों के व्यवसाय और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने वाले समुद्री जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपॉन्डर लगाएगी। नई दिल्ली के मत्स्य पालन क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि अगर कोई मछुआरा समुद्री सीमा को पार करता है तो ट्रांसपॉन्डर उन्हें अलर्ट भी जारी करेगा। सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है
कि जो मछली उत्पादन के साथ विशेष तौर पर समुद्री क्षेत्र में मछुआरे भाई जाते हैं वो बहुत ही खतरों में रहते हैं। आने वाले खतरे से आगाह करना, 72 घंटा पहले सूचना प्राप्त हो रही है, तो इस तरह का सहयोग अगर होगा स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, तो वो अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की माफी स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है। शीर्ष न्यायालय ने कंपनी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के लगातार प्रकाशन पर रामदेव और बालकृष्ण को जारी अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया। इस वर्ष मई में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने पतंजलि द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के मद्देनजर मामले को बंद करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद राज्य में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में छात्र सुरक्षा का मुद्दा सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जादवपुर में हाल ही में एक मामले के बाद यह दूसरी घटना है। इस घटना के कारण देशभर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न सार्वजनिक अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के प्रतिक्रिया स्वरूप आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर काम रोक दिया है। विभिन्न कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। झारखंड में कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या के विरोध में राजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स रांची के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड में आपातकाल को छोड़कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। आंदोलनकारी डॉक्टर मामले की सीबीआई जांच और कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित कुमार ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। भाजपा ने इस हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य सरकार पर असामाजिक तत्वों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाया।
यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है।
दिल्ली में एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय समेत राजधानी के अन्य अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना अपनी सैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्तमान में अपने सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास एक्स तरंग शक्ति की मेजबानी कर रही है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस अभ्यास में लगभग 11 देशों ने भाग लिया, जिसमें रफाल, F-18 और यूरोफाइटर सहित विभिन्न प्रकार के विमान शामिल थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आज तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना के सुलूर एयरबेस पर लड़ाकू विमानों और सैन्य विमानों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले हवाई प्रदर्शन और सामरिक युद्धाभ्यास ने यहां मौजूद लोगों को रोमांचित कर दिया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों जैसे राफेल, सुखोई 30 एमकेआई, मिराज 2000, मिग 29, जैगुआर और तेजस के साथ साथ रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर C-130J, सुपर हरकुलिस विमान, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एक्स तरंग शक्ति अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य इस अभ्यास में शामिल हुए देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों को बढ़ाना और अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। यह अभ्यास आपसी विश्वास को पुख्ता करने और भाग लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से भूपेंद्र सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। G4 देशों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना यह परिषद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के अनुकूल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविन्द्र ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा में G4 देशों की ओर से दिए गए एक वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व विशेष रूप से स्थायी वर्ग की कमी को संबोधित करने में अक्षम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संबंधित वर्तमान असंतुलन को सिर्फ बढ़ाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमरीका के नए राष्ट्रपति भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। डॉ जयशंकर भारत अमरीका संबंधों के विकास और अमरीका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए विश्व बैडमिंटन संघ ने 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। इस कारण प्रमोद भगत पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भागीदारी नहीं कर सकेंगे। संघ ने घोषणा की है कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को ठिकाने की विफलता के कारण निलंबित कर दिया गया है। संघ के वक्तव्य के अनुसार खेल पंचायत न्यायालय के एंटी डोपिंग विभाग ने 12 महीनों में प्रमोद भगत को 3 ठिकानों की विफलताओं का दोषी पाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर देशभर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नवाचार, वैज्ञानिक सोच और त्वरित समाधान खोजने का आह्वान किया। सरकार मछुआरों की सुरक्षा और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने वाले समुद्री जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपॉन्डर लगाएगी। G4 देशों ने कहा सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। और भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन पर 18 महीने के लिए निलंबित किया गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।